जो जो कूप है इसमें ऐसा रसायन भरा हुआ है कि इसके जल से जो तुम लाओगे जो ऐसा रसायन जल है कि उससे स्वर्ण बन जाता है। अब डाल दिया उसने चक्कर में, स्वर्ण बन जाता। हां तो फिर क्या करने पड़ेगा, इसमें तुम्हें प्रवेश करने पड़ेगा। अब कूप कैसा है कि उसमें कूप में कोई जगह से जाने को रास्ता नहीं है, नहीं निकलने को रास्ता है, सीधा सपट बंधा हुआ है, बहुत गहरा है। तो भाई कैसे जाएंगे? अब शेर जी जाने सोच रहे कि हम जाएंगे तो जाएंगे, मगर वहां से आएंगे कैसे? पहले आने की जो सोचनी चाहिए कि नहीं सोचनी चाहिए? अरे किसी के यहां भोजन करने जाते हो, कहते भैया भोजन करने तो जाते हो, पर अगर अनजाने में निकल जाओ और अनजाने में भोजन करो तो वो तुम बैठा दीजिए पास में, नहीं जाने का खा दे खा दे दे, विश्वास क्या? तो कहते हैं कि मैं रास्ता देता हूं तुम्हारे लिए और रास्ता लटका देता हूं, रस्ते से निकल जाओ। अब वो लोग इसे जाने देती कि भैया ऐसी होगी तो तुम घुट जा दो, तुम तो कितने सोने मना लो, तुम काय कर रहे थे, कितनी भूल है कि मैं तो ठीक है और कहने लगे तुम जब तुम भी ले जाओ से एक तुमने में तुम रस भर लेना, एक दो की रस्ते में बांधना तुम खींच लेंगे ऊपरे। तो अभी आने जाने बेचारी के ऐसे लोगों को जो तुम भी खींच रहे हैं रस खींच रहे हैं और लेकिन तुम भी नहीं चलाना हम उसे का करेंगे, तुम्हें नहीं सोची। लोग बाप का बाप बखाना, लोग के बस में तुम हमारे कहीं पटल के तुम तैयार हैं, दूसरे के चमार के पांव पर भी हम कह दिए तुम पर भी तैयार है, पैसा तो मिले। शेर भी खून बस भर गया लोग, सो तुम नहीं लाई और रास्ता पकड़ाओ अंधे कूप में जाके उतर गए। वहां जाके देखते क्या है कि वहां कई आदमी मरे पड़े, कई आदमी मरे पड़े, दुर्गंध आ रही है, एक तरफ पानी भरा हुआ है। अरे जी आदमी पड़े डरिए मरे डरे, तो अभी हमने क्या किया, हम तो गलती आ गए। तो भी लोग पाप का बाप, तो भी कुंडली में भर के जल रस्ता में बांध देता है और ऊपर से वह सन्यासी उस रस्ते को खींच लेता है, खींच के अपनी कुंडली छोड़ ली उसने। अब तो वो जाकर के बनाएगा उसने रसायन, अपना काम बनाता है और इनके लिए रस्सा लटका देता है और जैसे ही ये आधी दूर तक आते हैं कि रस्सा के लिए काट देता है। माने हमने अपना काम भी बना लिया, तुम हो पढ़ लिया मर जाओ चाहे कुछ हो, संसार में जैसे समझ गए हम अपना काम सिद्ध हो जाए तो नहीं कुछ दशा हुए। तुम तो कैरियो के इनमें नहीं मारो, सूर्य का सूर्य में तेल कहो कि इनमें नहीं मारो तो ये कौन ना जी होते पिस्तौल है। अब वहां जो गए तो इनकी हड्डी पसीज ढीली हो गई, अब निकलनी से हो तो अपनी नई चुंगड़ी चला गया। अब ये किसका शरण ले रहे, ना किसी का शरण नहीं, वहां शरण है तो भगवान का है, पंच परमेश्वर भगवान का। जिस प्रकार मैंने कहा नहीं, पहले नंबर अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सब साधु पांचों परमेश्वरों को नमस्कार किया। इस प्रकार से शुरुआत करते हैं अपन, पांचों परमेश्वरों को नमस्कार करते हैं। तो تین دن بعد ایک سنار آتا ہے، اس کنویں میں سنیاسی بلاتا ہے، کہتا کیوں پڑے پریشانی میں تم رات دن، ایک آئے اتنا سونا بچایا، اس کو اتنا سونا بچایا، ارے ہم کو ایسی چیز بتانا ہے کہ آپ کے پاس میں ایسی رسائن ہو جائے کہ سونے سونے بنا دیو، بتاؤ کیسو پہ جاؤ، ہم رستہ نہ لٹکائیں دے رہے، تمہاری ہمیں رسائن بھیجو، اپن بانٹ لے بوا جی آ جی سکھی ہو جاؤ۔ اس نے بھی نہیں سوچی کہ ایسے جو پیسہ والے سونے والے ہو رہے تھے اسے کہاں سن رہے تھے جی، سو وہ باپ کو باپ بکھانا دے ہی گھس گئے۔ تو جو جیسا سیٹ کی گئی سو بڑی جیسا ان نے ان کی نہیں کری، اب بڑی کوئی کلا رہے لیکن جی اور جانے پہ آ گئی تھی سونی جی، سونے ہم روپے سے پڑ کے سے ان کی ہڈی پسی بالکل ڈھیلی ہو گئی تھی، سونی جی کہہ رہے بھیا سنو سیٹ جی ہم تو نہیں بچے مرے جی، تم تو نہ اچھے کرنے والے ہو، تم ایک کام کرو، کا کریں ایک گوائے آتی ہے رس پینے کے لیے روز، اور اس کی اگر تم پیس پکڑ لے تو چھوڑ نہیں وہ بیچ میں لوگ کے بس کرے آدمی جا تو بتاؤ، اب بتاؤ گوائے کی پوچھ وغیرہ تیار ہے، اور لوگ کے بس میں کے اب جان بچانے کی پڑ رہی، گوائے آتی ہے اور جی سیوا اس رس کو پینے لگتی ہے، ایسے سیٹھ جی جا کر کے اور اس کی پوچھ پکڑ لیتے ہیں، بھگوان کا اسمرن کرتے جاتے ہیں، پنچ بمیٹی کے لیے اپنے ہرد میں براجمان کریں، اور آنکھیں نیچ رہی ان نے کچھ نہیں دیکھ رہے، سارا شریر کا چھل جاتا ہے، کیوں گواہی تو گواہی ہے بس چلے گی، اور تین کوپ سے جب اوپر گئی اوپر تک آتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں شریر کے سارے لوگ لوگ شریر ہو گیا ہے، گست آ جاتا ہے، جب تک ان نے نہیں دیکھا جب تک تو ہمت بنی رہی، اور جو دیکھا سو جیسے گوائے اوپر آن کے اور یہ آئے سے نے جو کے چھوڑے ہاتھ اور جو اوپر گرے دھرتی پہ سو گست آ گیا، بے ہوش ہو جاتا ہے ایسے، پر کہتے ہیں جس نے اپنے ساتھ میں سواس کیا ہے، جس نے آنکھ اپنے ساتھ میں ہت کیا ہے، اس کا کبھی جس نہیں بھولنا چاہیے۔ شیر جی اس جنگل میں پھرتے ہیں کہ اب رستہ کہاں ڈھونڈے، اس کو تو نکالے کس پرکار سے جس نے ہماری جان بچائی ہے، سیٹھ جی کو کوئی اپائے نہیں لگتا تو وہ جڑیں کھودتے ہیں، برچوں کی جڑیں کھودتے ہیں، اور جڑیں کھود کر کے اپنی شریر کی چنتا نہ کر کے اور بکلا نکال کے رستہ بناتی ہے، اور رستہ بنا کر کے تیار کر کے اور اس کے لیے رستہ لٹکاتے ہیں، اور اوپر رستہ پکڑنے کا ساہس نہیں ہے تو کوئی پرکار سے پتھر اکٹھے کر کے انہیں باندھ کے ان پر بیٹھ جاتے ہیں اور رستہ لٹکا دیتے ہیں، دھیرے دھیرے اس سنار کو بھی اوپر کر لیتے ہیں، دونوں اس پرکار ملتے ہیں جیسے کہیں سے کوئی بھائی بھائی آ کر کے مل گئے ہوئے، کہتے بھائی تم نے ہمارے لیے بچا دیا، کہتے تم نے ہمارے لیے بچا دیا، یہ کیا ہے کہ سوارت کا اپیوگ ہے، کوئی اپنے ساتھ اگر کبھی جس کر دے گئے تو اس کے ساتھ اپن جس نہیں بھولنا چاہیے اور ایسا لوگ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے لیکن ہم ایسا ہی کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ چاہے کل پکڑے جائیں یا چاہے کچھو ہو جائے جان پہ نوبت آ جائے لیکن ہم مانگے کی نہیں سوچتے. ہم مل جائے گا یہاں 10,000 کی فائدہ ہو جائے گی ہیں؟ چاہے جان خطے میں ہو جائے تو بھلی ہو جائے. سو اس لیے کہا ہے کہ لوٹ پاپ کا باپ بکھانا. بھیا یہ لوٹ پاپ کا باپ ہے, لوٹ کے لیے چھوڑنا چاہیے اپنے لانے. اور سبا کہتے اگر کسی کے ساتھ کسی نے اپنے ساتھ میں اگر سوارت کیا ہے اس کا سوارت نہیں بھولنا چاہیے, اس بڑک سیٹ گائیں اپیوگ کرنا چاہیے جس پرکار کے اس نے اس سنار کو باہر نکالا تھا. بولیے مہاویر بھگوان.
श्री क्षम सागर जी महाराज के पावन पुण्य चरणों में समाज की ओर से विनती है, स्वामिन अपने मंगलमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करने की अनुकंपा करें. हे स्वामिन नमस्तु नमस्तु नमस्तु. सुख ही सुख है वे देवता लोग हैं.
विभिन्न लोक में रहते हैं और जिनके सुख तो कुछ नहीं है, बहुत अत्यंत अल्प क्षण है सुख के, दुख की बहुलता है, ऐसे जीव नरक में है। लेकिन मनुष्य और तिरंच पर्याय ऐसी है जिसमें सुख है दुख है, क्षण भर को सुख है अगले क्षण दुख जरूर है, दोनों एक साथ लगे हुए हैं। इनके बीच में कैसे हम और समता रख सकें? विरक्ति के मायने समता का अभ्यास ही है और कुछ भी नहीं है। विरक्त व्यक्ति से ये मतलब नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के और एक तरफी कोने में बैठ जावे तो विरक्त हो गया, कहते ऐसा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सहज रूप से जीना और जैसी विपत्ति या संपत्ति मिले उन सब में जो है और साम भाव रखना, ये सीखना है, ये साधना है। तो बाह्य भावनाएं हमें ये सिखा देती हैं और बाह्य भावनाएं उनका चिंतन करने से हमारा भ्रम भी टूट जाता है, संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता मालूम पड़ने लगती है। मतलब सीधा ये है कि जो चीज जैसी है वो वैसी दिखाई देने लगती है। अब जो चीज जैसी है वैसी दिखने लगे तो हमारा जीवन आसान हो जाता है और हम पिछले कई दिनों से एक ही प्रयास कर रहे हैं, हमारा जीवन आसान हो, ना हम अपने जीवन को खुद मुश्किल में डालें ना अपने आसपास के जीवन को मुश्किल में डालें, बल्कि सबका जीवन आसान हो। जिसका जीवन जितना निर्मल होगा उतना आसान हो, और निर्मलता आती है सुख दुख में समता रखने से। ये इस तरह से एक प्रक्रिया है, कहीं से भी हम शुरू करें हमारा लक्ष्य जो है हम अपने लक्ष्य तक इस तरह पहुंच सकते हैं। ये विचार की प्रक्रिया चूंकि निरंतर चलती है इसलिए इसके असर ज्यादा होते हैं, ये हमने पिछले दिनों समझ लिया है कि ये टेम्परिंग यह हैमरिंग की प्रक्रिया है जिसमें हम बार बार चोट करते हैं तो चीज मजबूत हो जाती है। कोई भी संस्कार हमारे भीतर लगातार अगर पड़ता रहे तो बहुत प्रबल हो जाता है, और जो संस्कार जितना प्रबल होता है उसे हम आसानी से फिर अपने जीवन में फॉलो करते हैं, अपने जीवन में उसी के अनुसार चलते हैं। हमने पिछले दिनों छह बातें समझ ली, आधा काम हमारा हो गया है। देखा जाए अगर तो हमने संसार की अनित्यता और उस संसार की अनित्यता या कि क्षण भंगुर या नश्वरता के बीच जो शाश्वत है उसे पहचानने की प्रक्रिया शुरू करी। इस संसार में हम जहां भी शरण खोजते हैं कहीं शरण नहीं है, हमने एक शरण खोज ली वो धर्म की शरण है। हम इस संसार में सिवाय जन्म मरण और बुढ़ापे के दुखों के अलावा कुछ भी नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं कि इस संसार की जब तासीर ही ऐसी है तो उस संसार की तासीर समझ के स्वभाव समझ के इससे पार हो जाना चाहिए। तो जन्म मरण की प्रक्रिया ये संसार है, मुझे इससे बचना चाहिए, ऐसा विचार कर रहे हैं। अभी उपाय उपाय कुछ नहीं, ये सिर्फ एक विचार की प्रक्रिया है। नश्वर है तो नश्वर जान करके उसके साथ वैसा व्यवहार शुरू कर दे। यहां जन्म मरण का दुख है, यहां जन्म मरण है, आवागमन का नाम ही संसार है, मुझे ऐसा विचार करके इस संसार से पार होना चाहिए। मैं यहां पर अपने सुख दुख को अकेले ही भोगता हूं, ऐसा मेरे अंदर विचार आना चाहिए। अभी तो ये लगता है कि नहीं, कोई सुख और देता है, दुख भी कोई और देता है, नहीं अब मालूम पड़े। और ऐसा भी लगने लगता था कि सब हमारे दुख में सहयोगी हो जाएंगे, तो भैया ऐसा नहीं है, अपना सुख दुख अपन को अकेले ही भोगना पड़ता है, ये समझ में आ गया। ये जो सब चीजें दिखती थी ये लगता था मेरी है, मेरे साथ जावेंगी, मेरा शरीर है, इसको संभालो, इन सब चीजों को संभालो, समझ में आया कि नहीं ये चीजें सब अलग हैं, इनको संभालने से ये संभलती भी नहीं है। ऐसा हमने अन्यत्व भाव बार बार विचार किया है कि ये सब पर पदार्थ हैं और पर पदार्थों में ज्यादा रचना बचना नहीं चाहिए, क्योंकि वे एक दिन जरूर जो है हमसे जब पृथक ही है तो पृथक हो ही जाते हैं। और फिर कल हमने जो सबसे निकट हमारे शरीर है जिसको लेके हम फिरते रहते हैं उसके बारे में समझा। वो शरीर पवित्र है, मेरे काम आ सकता है इतना जरूर है, अपवित्र है इसलिए उसे उठा के कहीं फेंक आए, ऐसा नहीं है। और जो चीजें अपवित्र हैं उनको तो उठा के फेंका जा सकता है, लेकिन ये शरीर अपवित्र है, इसको अब मुझे बार बार प्राप्त ना करना पड़े, इसलिए एक बार इसका सदुपयोग कर लें। तो फिर नहीं, किसी भी चीज का सदुपयोग कर लो तो फिर वो चीज उसको पाना सार्थक हो जाता, फिर दूसरी बार आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसा सदुपयोग कर लिया उसका कि दूसरी बार आवश्यकता ही नहीं पड़े। इस शरीर का एक बार, इस इंद्रिय और मन का एक बार सदुपयोग कर ले गए अनुपेक्षा। अगर आज हम थोड़ा विचार करें, इन सारे विचारों के बाद एक नया विचार शामिल कर लें कि मन और इंद्रियां और ये शरीर और इनमें बैठी हुई चेतना, वो तो मान लो रथी हो गई, जैसे कि रथ में कोई बैठा है और ये इंद्रिय और मन और शरीर तो हो गया रथ, और इंद्रियां हैं उसके घोड़े और मन है उसकी बलगाएं, और रथी के हाथ में है। इस तरह हमारे जीवन की यात्रा चल रही है। इस शरीर के बारे में इस तरह विचार करें कि ये शरीर तो एक रथ है जिसमें बैठी मैं आत्मा और अपनी यात्रा कर रहा हूं, और घोड़े लगे हुए हैं इंद्रियों के, और बलगाएं मेरे हाथ में, मेरा मन मेरे हाथ में है। अब मुझे अपने उस मन और इंद्रियों के घोड़े को व्यवस्थित रूप से रखना है। इस व्यवस्थित रूप से रखने की प्रक्रिया को ही अपन अनुप्रेक्षा कहते हैं या भावना कहते हैं। शरीर को भी, मुझे अपने रथ को भी यात्रा पूरी होने से पहले टूट फूट ना हो, ये ध्यान रखना है। हाँ, इस शरीर की भी उतनी सुरक्षा करनी है जिससे कि मेरी यात्रा आसानी से होती रहे। इसमें रंग रोगन करना जरूरी नहीं है, पर इसकी सांस संभाल करना तो जरूरी है। इस तरह हम इसको विचार करें, और वो जो बलगाएं हमारे हाथ में हैं वो क्या है? वो हमारा अपना मन है। हम खुद उसका सारथ्य कर रहे हैं, या हमारा विवेक उसका सारथ्य कर रहा है। इसीलिए तो प्रतीक रूप में आता है गीता में कि अर्जुन सारथ्य कर, अर्जुन के रथ का सारथ्य कौन कर रहा था? श्री कृष्ण जी खुद कर रहे थे। श्री कृष्ण जी कौन है? वो हमारा अपना विवेक है। वो हमें जगा देते हैं कि ठहरो, तुम कहां ले जा रहे हो अपने जीवन के रथ को, मैं बताता हूं, इस तरफ ले चलो। और उसमें कौन बैठा हुआ है? अर्जुन। वो हमारा भगवान के प्रति अनुराग है, प्रतीक है उस बात का। एक दिन और अपन ने इस चीज को थोड़ा दूसरे ढंग से समझा था। अगर हमारे भीतर जो हम इस शरीर में बैठे हुए हैं उसके भीतर भगवान के प्रति आप अनुराग हो, और हमारे मन की बलगाएं किसके हाथ में हैं? वो भगवान के हाथ में दे दी। अपने विवेक के अनुसार हम अपने जीवन को ले जाएंगे। हमारे विवेक को कौन जागृत करता है? वो अनुप्रेक्षाएं, हमारी भावनाएं, और निरंतर भावना भाएंगे जब, तब वो हमारे विवेक को जागृत करेंगे। और एक बार विवेक जागृत हो गया तो पांचों इंद्री के घोड़े हमारे हाथ में आ जाते हैं, और हमारी यात्रा बहुत आसान हो जाती है। अगर हम इस तरह भी देखें तो भी हम इस शरीर का, अपने इंद्रिय और मन का उपयोग कर सकते हैं। मन वचन काय की निरंतर क्रिया से ही हमारे अंदर भले बुरे दोनों प्रकार के कर्म आते रहते हैं। और जो व्यक्ति जितना मन वचन काय की क्रिया को व्यवस्थित कर लेता है, उसके अशुभ कर्म आना उतने ही कम हो जाते हैं, शुभ कर्म तो फिर भी आते रहते हैं। और अगर कोई अपने मन वचन काय की क्रियाओं को बिल्कुल शांत कर दे तो फिर उसके कर्म आना भी बंद हो जाते हैं। वैसी स्थिति तो आज दुर्लभ है। 11वें गुण स्थान में बहुत ऊंची स्थिति में जाकर के कोई ध्यान में लीन योगी ही अपने मन वचन काय तीनों की क्रिया को रोक सकता है। हम नहीं रोक पाते हैं तो हमारे निरंतर आश्रय होता रहता है। निरंतर कर्मों के संस्कार हमारे अंदर पड़ते रहते। संस्कारों के आगमन का नाम ही आश्रय है। आज हम यही समझने के लिए बैठे हैं कि ये आश्रय भी एक भावना है, तो आश्रय भावना में क्या विचार करना, विचार यही करना कि मैं जितना मन वचन काय की क्रिया करूंगा उतना मेरे संस्कार खोटे या कि भले दोनों पढ़ते चले जाएंगे, और मेरे लिए इस आश्रय के दोष का विचार करना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई फॉरेन बॉडी मेरे भीतर आती रहेगी, जैसे कि मेरे अपने राज्य में और विदेशी लोग आते रहें, तो बताइए मैं अपने स्वतंत्रता का अनुभव कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मुझे अपने आत्मा की उस स्वतंत्रता का अनुभव करना है, तो जो चीजें मेरे बाहर से आती हैं उनके आवागमन को मुझे रोकना चाहिए। आवागमन ठीक नहीं है। कर्मों का आना जो है वो चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, दोनों ही हमारे लिए आश्रय की अपेक्षा से योग नहीं है। पर जब मुझे शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के संस्कारों में से चुनना पड़े, तो मैं शुभ संस्कार पहले चुनूंगा, वचन काय की प्रवृत्ति को ऐसा बनाऊंगा जिससे कि अशुभ जब कर्म आई रहे हैं, संस्कार पड़ी रहे हैं, तो भले संस्कार पड़े ना, खोटे संस्कार क्यों पड़े? खोटे संस्कार तो मेरे जीवन को नष्ट करने वाले ही हैं, ऐसा विचार करना, और भले संस्कार मेरे जीवन को ऊंचा तो उठाएंगे लेकिन मुझे इस संसार में अटकाए रखेंगे। देखो, बुरे संस्कार संसार में भटकाते हैं, जिसको अपन कहते हैं कि पाप। पाप कर्म तो सर्वथा है ही है, पाप मुझे संस्कार में भटकाता है, लेकिन पुण्य कर्म मेरे लिए संसार में अटकाए रखता है, भटकाता नहीं है, अटकाए जरूर रखता है। मुझे इस पुण्य कर्म के करते हुए भी क्या करना है, शुभ और अशुभ सबसे ऊपर उठ जाना है। जो जोगन की चपलाई, ताते भय आश्रय भाई, आश्रय दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। ऐसी तो लिखा, ऐसी भावना भाना कि मन वचन काय की जो चपलता है, जो चंचलता है, उसके द्वारा निरंतर मेरे कोई न कोई शुभ और अशुभ कर्म आते रहते हैं, तो कर्म तो मेरे लिए दुखदायी ही है। वे बुद्धिमान है जो कि अपने मन वचन काय की क्रिया को रोक करके कर्मों के आवागमन से बच जाते हैं। मुझे भी 24 घंटे अभी वर्तमान में अगर देखा जावे तो अपने अंदर धारणा क्या है कि शांत नहीं बैठो, कछु न कछु करत रहो। देखो, आप सामान्य रूप से कहने में आएगा कि कौन से बैठे शांत, करो कछु। अकर्मण्यता बुरी है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन बुरा करने से अकर्मण्य होना ज्यादा अच्छा है। हाँ, खटपट करने से चुपचाप अकर्मण्य बन के आलसी बन के बैठना फिर भी ठीक। मैं आलसी बनने का नहीं कह रहा हूं आपको, नहीं तो आप आलसी बन जाओ। मेरे कहने का आशय ये है कि अगर हम भले कर्म नहीं कर पा रहे हैं, मन वचन का एक ही भली क्रिया नहीं कर पा रहे, तो भैया खोटी तो छूने करें कम से कम। दोनों से अगर भली नहीं कर, किसी का अपन कहते ना कि भला नहीं कर पा रहे, तो कम से कम बुरा भी मत करो, कुछ मत करो, चलो तटस्थ हो जाओ। आश्रय की प्रक्रिया समझने के लिए यही समझना आवश्यक है कि जब जब मुझे कर्मों का आगमन, तो 24 घंटे कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब मेरे आश्रय रुक जावे, कोई क्षण ऐसा नहीं। 24 घंटे कर्म आते रहते हैं, कोई ना कोई संस्कार, कोई ना कोई भाव। अच्छा बताओ, मन में कोई ना कोई विचार तो चलते ही रहता, भले ही शरीर अपना शांत हो जावे, मन तो चलता रहता। वाणी शांत कर लो, फिर भी मन चलता रहता है, और बोलने की इच्छा भीतर बनी रहती है, करने की क्रिया की इच्छा बाहर से, भले ही शरीर चुपचाप बैठा, लेकिन करने के भाव, बोलने के भाव, मैं कुछ नया सोचूं इस तरह सोचने के भाव, ये प्रयत्न जारी रहता, इसको कहते हैं मन वचन काय की क्रिया। अकेले शरीर के हलन चलन का नाम काय की क्रिया नहीं है, शरीर के हलन चलन का विचार आपके भीतर चल रहा है। मैं बोलूं, कई बार अपन चुप रह जाते हैं कि भैया बात नहीं बिगड़ जाएगी, चुप रहो, मगर बोलने की इच्छा बनी रहती, वो जो बोलने की इच्छा है वो कर्मों का आश्रय करती है। शांत तो बैठी है, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पर करने की भावना है। इस तरह हमें मन वचन काय की क्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं। क्या किया जाए, उन वचन मन वचन काय की अशुभ क्रियाओं को जैसे बने तैसे कमती किया जाए और शुभ क्रियाओं को शुरू किया जाए। इसीलिए जप तप संयम परोपकार ये सारे काम क्यों रखे गए हैं, 24 घंटे हम आश्रय से बच नहीं सकते तो क्या करें, बुरे आश्रय से ही बच जाएं, बुरे कर्मों के आने से ही बच जाएं, तो भले कर्म में लग जाओ तो बुरे कर्मों के लिए अवसर ही नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि जैसे गंदे कपड़े को धोने के लिए साबुन सोडा और जल चाहिए, इसी तरह जप और तप और परोपकार ये सब तो साबुन सोडा की तरह है, लेकिन उसके साथ हमारे परिणामों की भलाई की भावना, परिणामों की निर्मलता वो जल के समान है। अकेले साबुन सोडा लगा दोगे कपड़े में और पानी न होगे तो भी कोई काम नहीं आएगा। तो पवित्र भावना हमारी रहे और फिर हम जब तक नियम जो भी है वो सब में हम लगे रहें। इसीलिए बाह्य क्रिया का उपदेश बहुत दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कि भैया खोटे काम से तो बच जावे। अपन लोगों को ये मालूम है, बहुत बड़ी व्याख्या करने वाले लोग ये भी कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों समान ही है क्योंकि दोनों कर्मों के आश्रय है, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। पाप से पुण्य भला है। जब भी पाप और पुण्य में से, भले और बुरे में से चुनना हो तो भले को ही चुनना और बुरे को छोड़ देना एक बहुत ऊंची स्थिति है। जब हम अपने आत्मा में और लीन हो जाते हैं तब हम पाप से और पुण्य से दोनों से मुक्त हो जाते हैं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके संवर लही सुख अवलोके। ये बात की स्थिति है। जो शुभ और अशुभ दोनों के बीच आत्मस्थ हो जाते हैं उनकी स्थिति बिल्कुल अलग है। अभी अपन उतनी उस ऊंची स्थिति में नहीं पहुंचे। शुभ और अशुभ में से कोई एक करना पड़ता है, तो जब मुझे शुभ अशुभ में से चुनना है तो मैं शुभ को चुनूं और अशुभ को छोड़ता चला जाऊं, इतना ही है। और आश्रय के बारे में विचार क्या करना है अपने को कि कर्म निरंतर आ रहे हैं, मुझे क्या करना। जैसे हमने एक बार कहा था आपसे कि कमरे में दो खिड़कियां हैं और हमारे साथ मुश्किल ये है कि हम दो में से किसी एक को ही खोल सकते हैं। अब कौन सी वाली खोले, तो एक खुलती है कहां पर, बगीचे की तरफ, और एक खुलती है कचरा घर की तरफ। अब कौन सी वाली खोलना ये हमारी चॉइस है। कचरा घर तरफ वाली खिड़की खोलेंगे तो बदबू भरने वाली है कमरे में, और अगर बगीचे की तरफ की खिड़की खोलेंगे तो खुशबू भरने वाली है कमरे में। अब आपको जैसा भी करना, आश्रय निरंतर हो रहा है दोनों प्रकार का, शुभ भी और अशुभ भी। मुझे करना ये है कि अधिक से अधिक मुझे शुभ का आश्रय हो, अशुभ का ना हो। भले कार्य करने से कम हमारे मन में अपने आत्मा के कल्याण का विचार तो बना रहता है। वरना कई लोग ऐसे हैं जिनको पाप और पुण्य का अंतर ही नहीं मालूम। बताइए, वे तो पाप कार्य को भी श्रेष्ठ मान के करते चले जा रहे हैं। ऐसे अज्ञानता पूर्वक जो लोग कर्मों का आश्रय कर रहे हैं उनके तो संसार से बचने का कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन यदि हम थोड़े से अपने को बुद्धिमान मान के चलते हैं तो हम ऐसा विचार करें कि मुझे हमेशा बुरे कार्य से जितना बने उतना बचना है और भले कार्य करते रहना है। मेरे ख्याल से हमारे अंदर जो कुछ भी जो बुरे कर्म आते हैं वो हमारे मुंह से आते हैं। इसलिए एक सूत्र अलग से लिखा हुआ है, मिथ्या प्रवृत्ति प्रमाद कषाय बंध योगा बंध हेतुवा। आश्रय और बंध के अगर कारण है तो हमारी अपनी गाफिलता है। जो हम पिछले दिनों समझ चुके हैं मिथ्यात, जिसको हमने दूसरी भाषा में कहा है कि अपने परिणामों की मलिनता, अपने परिणामों में निर्मलता हो, अपनी दृष्टि में निर्मलता हो, तो हम उस बच जाते हैं, आश्रय से बच जाते हैं। सम्यक दर्शन अगर हमें है, दृष्टि निर्मल है, तो कम कर्म आएंगे। यही है हमारे असंयम का भाव कम है, अविरति जिसको कहते हैं असंयम। अगर हमारे संयमित जीवन है तो हमारे आश्रय कम है। मिथ्यात् अविरति प्रमाद, जिसमें हमारी भलाई है उसका हमें हमेशा विचार बना रहता है, तो हमारे कर्मों का आश्रय कम होगा। और योग मतलब मन वचन काय की क्रिया जितनी शुद्ध हो सके और कषाय जितनी मंद हो सके उतना कमती आश्रय होगा। ये बातें हमें हमेशा विचार करते रहना चाहिए, मेरी दृष्टि निर्मल है कि नहीं, मेरा जीवन संयमित है कि नहीं, मेरी कषाय मंद है कि नहीं, मेरे मन वचन काय की क्रिया पर मैंने कोई लगाम लगा रखी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मेरे इंद्रिय और मन के घोड़े निरंतर दौड़ते चले जाए चाहे जिस दिशा में, तब तो फिर मेरा रथ और उसमें बैठा मैं रथी वो तो सभी नष्ट हो जाएंगे, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। बस इस तरह से अगर हम व्यवस्थित कर ले गए, मुख्य रूप से तो दो ही चीजें हैं, कषाय और योग, मन वचन काय की क्रिया और हमारी अपनी कषाय। कषाय हमारे कर्मों को, संस्कारों को रंगती है और हमारे अंदर संस्कारों में अस्थिरता पैदा करती है मन वचन काय की क्रिया, जैसे कि तरंग है और रंग है, तो अपना चेहरा साफ नहीं दिखाई पड़ता। जैसे पानी में तरंगे उठ रही हो और उसमें कोई रंग पड़ा हो, दोनों स्थितियों में हमारा चेहरा कहां दिखेगा। और अगर शांत हो जाए, वो तरंगे तो है मन वचन काय की क्रिया और वो रंग है हमारी अपनी कषायों का। इन दोनों पर हम जरा सा विचार कर ले गए और हमेशा सावधानी रखें। जैसे अपने अंदर क्रोध ज्यादा आ गया, मान ज्यादा आ गया, माया जारी करने का मन हुआ या लोभ जागृत, इन सब स्थितियों में फौरन ये विचार कि आपको लगेगा कि वही सब बातें हैं। मैं खुद पहले कह रहा हूं कि वही सब बातें हैं, लेकिन हम अब नए ढंग से विचार करके इस प्रक्रिया को अपने जीवन में निरंतरता दे रहे हैं। ये निरंतरता जो है हमारे जीवन को परिवर्तित करेगी। क्रोध किसको नहीं आता, लेकिन अब वो विचार, जैसे क्रोध आएगा उसके पांच मिनट बाद मैं विचार की प्रक्रिया शुरू कर दूंगा कि मैंने ये क्रोध किया, इससे मेरे लिए क्या क्या हानि हुई, क्या क्या लाभ हुआ, तो मालूम पड़ेगा कि लाभ तो कुछ भी नहीं हुआ, हानि हुई। बस आश्रय मेरे लिए हानिकारक है यह बात मेरे भीतर जितनी मजबूत हो जाएगी उतनी मुझे आश्रय से बचा लेगी, उतनी मुझे कर्मों के आगमन से बचा लेगी। और अभी तो अपन को ये लगता है कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ये सब तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो चलता ही नहीं है। ऐसा नहीं, जितने कम में हमारा काम चलता जाए, जितनी मन वचन काय की क्रिया कम करनी पड़े और जितनी कषाय कम, और उतना ज्यादा हम जीतते चले जाएंगे। एक उदाहरण देता हूं और शायद उससे समझ में आ जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से इस प्रक्रिया को मैं इसलिए यहां विश्राम दे रहा हूं क्योंकि 12 भावनाएं पूरी करने के बाद मेरा मन ये है कि अपन जो कर्मों का आगमन हमारे भीतर होता है वो कैसे सब होता है, एक चीज, वे कर्म हमारे साथ कितने दिन तक बने रहते हैं, कैसा कैसा फल देते हैं, हम उन बने हुए कर्मों के साथ क्या कुछ कर सकते हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, नए आने वाले कर्मों को रोक सकते हैं, इस सब प्रक्रिया को एक अलग से अपन समझेंगे। अभी तो मैं सिर्फ संक्षेप में उन सब चीजों को टच कर रहा हूं। एक उदाहरण से आज हमें सिर्फ यह समझना है, आश्रय तत्व, आश्रय अनुपेक्षा और कर्म बंध की प्रक्रिया तीनों में अंतर है। हम अभी सिर्फ आश्रय अनुपेक्षा कर रहे हैं, आश्रय के दोषों का विचार करना आश्रय अनुपेक्षा है, संक्षिप्त है ये। आश्रय और बंध की प्रक्रिया समझना बिल्कुल अलग चीज है और आश्रय तत्व को समझना अलग चीज है। और आश्रय अनुपेक्षा करना, अपना अभी आश्रय अनुपेक्षा आश्रय का विचार कर रहे हैं, फिर तत्व भी समझ लेंगे और साथ में प्रक्रिया पूरी समझ लेंगे, वो ज्ञान का काम है, ये भावनाओं का काम है। जब हमारे भीतर ये भाव प्रबल हो जाएगा कि आश्रय मेरे लिए दुखदायी है, तब फिर मैं आश्रय से कैसे बचूं, ये सब प्रक्रिया समझ लेंगे अपन। क्या होता है, वो जो उदाहरण हम आपको एक समझा रहे थे उससे मालूम पड़ जाएगा कि आश्रय हमारे ऊपर निर्भर करता है, किसी और पर निर्भर नहीं करता है। कैसे संस्कार मुझे डालना है ये मेरे ऊपर निर्भर है। क्या हुआ, एक पिता के चार बेटे थे, एक बड़ा, फिर एक मंझला, फिर एक उससे और छोटा, उसको क्या बोलते हैं हम, संजना कहते हैं हम, क्या है ना, फिर उसके बाद जो है सबसे छोटा, ऐसे चार थे। अभी तो इतना छोटा था कि अभी वो दुकान ही नहीं जाता था, बस उसको तो खाना पीना, और स्कूल चले गए तो चले गए, नहीं तो अभी इतने छोटे की स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं। अभी तो ज्यादा से ज्यादा वो पिताजी की गोद में ही खेलता है, मां से उतना उसको ज्यादा नहीं है, पिता से बहुत लगाव। और बाकी तीन जो है थोड़े बड़े हो गए। अब क्या हुआ कि कर्म का संयोग ऐसा आया कि पिताजी नहीं रहे। अब पिताजी नहीं रहे ये खबर चारों बेटों के पास पहुंच गई। छोटे बेटे ने तो जैसे ही देखा कि पिताजी बोलते नहीं हैं, आंख नहीं खोलते, हम परेशान हैं, जगह जगह के जागते नहीं हैं, तो उसने रोना शुरू कर दिया। पिता की अनुपस्थिति उसके लिए बहुत तकलीफदायक है, हैं? क्योंकि उसका पूरा जीवन उसी पर निर्भर है, इसलिए उसे बहुत कष्ट है। क्या तीन लोगों को कष्ट नहीं है? है। पहला वाला क्या कर रहा है? पहला वाला तो जैसे ही खबर पहुंची है जल्दी से दुकान में ग्राहकों को निपटा करके दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा है। देखते जाना, चारों का अपना अपना काम और चारों पर एक ही घटना का अलग अलग प्रभाव। हमारे अपने जीवन में भी रोज घटनाएं घटती हैं, हमें समझना ये है कि उन घटनाओं के बीच उन चारों में से किस प्रकार का व्यवहार करें तो हम अपने जीवन में वैसे कर्मों को ला सकते हैं, हटा भी सकते हैं। पहले वाले को मालूम पड़ा कि पिताजी नहीं रहे, दुकान खुली है, जल्दी जल्दी दुकान संभाल रहा है और ग्राहक निपटा करके आ रहा है। दूसरे वाले को जैसे ही मालूम पड़ा है तो दूसरे वाले का तो घर में काम यही था, वो तो होम मिनिस्टर था घर का, उसका काम ये है कि किसकी कहां रिश्तेदारी कैसी है, सो फौरन टेलीग्राम करने के लिए, चिट्ठियां लिखने के लिए और जुटा हुआ। पिता के मरने की खबर उसको मिलते ही साथ वो ये काम कर रहा है। और तीसरे वाले को तो ये है कि अब सब लोग आते ही होंगे, अब आएंगे तो बैठने के लिए दरी बिछाओ और लकड़ियां और घास और रस्सी ये सब लाना है, मटका लाना है, ये सब व्यवस्था इंतजाम। तो तीसरा वाला ऐसा दोष में माहिर था, सबोष में लगा। पिता के मरने की खबर तीनों को मिली है लेकिन तीनों के अलग अलग व्यवहार हैं। जिसका जितना ज्यादा पिता से मोह है वो उतना ज्यादा दुखी है, बेहोश पड़ा हुआ है, पिता नहीं रहे। और बाकी देखो तो पिताजी रहे नहीं या भैया दुकान में बैठे तो क्या करें, मिटा देगा, अभी तो रहे नहीं है, दुकान थोड़ी ही ढाएंगे कि खुली खुली दौड़ के रोड पैसे वाला पिताजी नहीं रहे, ऐसे भगत है। पहला वाला थोड़ा समझदार हो गया है, वो कहता है ये सब समेट लो फिर चलेंगे, पिताजी तो रहे नहीं है। और दूसरे वाले को खबर मिली तो वो कहता अब घरे कब जाने, पिताजी रहे नहीं, फोन पे मालूम पड़ा, सो पहले वो तो चलो सो पोस्ट ऑफिस में सबको खबर दे, फोन करो जहां जहां जैसे करने जितने रिश्तेदार हैं वो काम में लगाओ। तीसरा वाला पिता के देखने बिल्कुल नहीं गया कि वो कैसे मर गए, कहां पड़े हुए, ये वो तो लकड़ियां जोड़ने में और आरती की तैयारी करने में लगा। बताइए आप, ये अपने जीवन में आने वाला रोजमर्रा का उदाहरण। ऐसे ही हमारे जीवन में सब चीजें आती हैं, उनके बीच में हम विचार करें कि हमारे परिणाम किस तरह के हमें रखना है। जैसे जिसके परिणाम है वैसा उसके लिए कर्मों का संस्कार पड़ता है, ये विचार आना चाहिए। ये विचार हमारे भीतर निरंतर बना रहना चाहिए कि मेरे अनुसार इस घटना को मैं मैनेज कर सकता हूं, एक ही घटना को अलग अलग ढंग से मैं अपने विवेक के द्वारा, मैं अपनी बुद्धि के द्वारा, मैं अपने परिणामों के द्वारा उसी घटना से कम आश्रय कर सकता हूं। सबसे ज्यादा आश्रय कौन कर रहा है? पूरा तो बेहोश है, लेकिन सबसे ज्यादा संप्रेषित परिणाम करके और आश्रय सबसे ज्यादा कर रहा है, और बाकी तीन अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, दुख तो तीनों को है, तीनों महसूस कर रहे हैं। और अभी हो सकता है कि जैसे ही अपने काम से उधर अर्थी पे तैयार होकर पिता को लिटा देगा, तब हो सकता है कि खुद गश्त खा के गिर जाए, काम पूरा हो गया अभी, लेकिन काम में लगा है। और सबको खबर देने के बाद जैसे ही वे सब आवे शुरू हुई है, सो जोन को देखे जितना निकट का होगा उससे निपट के रोएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी इस समय मुझे अपना। और अगर ऐसा ही मुझे अपना कर्तव्य हमेशा याद रहे, तो संसार के सुख दुख के बीच में होने वाले कर्मों के आश्रय से मैं बच सकता हूं। अपना विवेक अगर हमेशा जागृत रखूं, जैसा ये तीन अपना पिता के मरण की खबर सुन के भी विवेक जागृत करके अपने अपने कर्तव्य में लगे हैं, वैसे ही मैं अपने कर्तव्य में लगा रहूं और इस संसार के सुख दुख के बीच अपना विवेक बनाए रखूं, तो ही मैं आश्रय से बच सकता हूं। वरना तो आश्रय निरंतर हो रहा है, यह मेरे लिए दुख का कारण है। ऐसा विचार अपन करें और अपने विवेक को बनाए रखें। इतना ही आश्रय अनुप्रेक्षा के बारे में समझने योग्य है, और इसको समझकर अपने जीवन को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया करनी चाहिए। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
शाश्वत सुख देशक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता कहां से चाहिए, दर्शन करने
वाले यहां से चले जाते हैं।